शांति
ओम शांति
ओम प्रेम
ओम प्रेम
ओम आनंद
ओम आनंद
परमानंद। आपने मैं समच्युत ये जो सॉन्ग बजा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, तो ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल गया, जैसे ये सॉन्ग बजाने वाला, जैसे कोई भी स्टोरी होती है तो टेलर दिखाते हैं ना, तो ये ऐसे सॉन्ग बजाते हैं, तो स्टोरी कौन सी चलने वाली है, फिल्म कौन सी निकलने वाली है। तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पर पहले है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, जैसे कि कल मैंने बताया था। तो जब कुमार और कुमारी शब्द आता है और पिता शब्द आता है तो माता तो साथ में है ही, क्यों कि पिता है तो बगैर माता पिता हो बच्चे होंगे क्या। तो ये फिर शिव शक्ति से ना परम पिता ने, तो प्रजा पिता परम पिता नहीं है, ये तो आपको मैं समझती हूँ आज की, या क्योंकि अभी तो एक ही दिन हुआ है ना, पता नहीं ये सब्जेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो आप आत्मा हैं, कल सुबह तो ये तो आपको पता चला कि आप आत्मा हैं। आत्मा का पिता कौन, परम पिता परमात्मा। फिर प्रजा शब्द कहते हैं तो मनुष्यात्मा ना, प्रजा का प्रजा पर राज, राजा प्रजा, फिर राजा और प्रजा मीन्स पीपल, मनुष्य, तो मनुष्यों का पिता आदि देव एडम ब्रह्मा आदिनाथ, यानी कोई चीज की आदि करने वाला है, न्यू बिगनिंग, परंतु वो शरीर गढ़ने वाला नहीं है। पर शरीर में जो हमारी आत्मा के अंदर शक्ति है उसको रिजुविनेट करने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है। मैं जब छोटी थी तो हमारे घर में एक कैलेंडर था, 5 साल की होंगी मैं उस समय, तो ब्रह्मा जी बूढ़े बाबा जी, ब्रह्मा का चित्र ऐसा ही दिखाते हैं दाढ़ी वाला बूढ़ा ब्रह्मा बाबा, तो उनके मुख से बहुत सारे टॉयज निकल रहे हैं, वो टॉयज का ढेर था, कैलेंडर था मतलब। तो मैंने सोचा ये बूढ़े बाबा जी के पेट में फैक्ट्री होगी, जो इतने सारे खिलौने निकल रहे हैं, तो उस फैक्ट्री के पास जाना चाहिए, बूढ़े बाबा जी के पास जाना चाहिए, तो कुछ खिलौने लेके आएंगे। पर मुझे मालूम नहीं था मैं ही वो खिलौना हूँ जो खिलौने। तो आपका मतलब जब थोड़ा और बड़े हुए, हमारी ग्रैंड मदर धार्मिक संस्कारों वाली थी, मदर भी बहुत धार्मिक संस्कारों की थी, फैमिली ऐसी थी, तो ये सुना कि प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, तो तब समझ में आया कि मुख से वो ब्राह्मण पैदा हुए, तो शरीर से तो वो तो मनुष्य है, मेल से तो ब्रह्म रचना तो माँ रचती है। फिर ये वंडरफुल बात है कि मेल से रचना हो रही है, पैदा हो रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी
जो जो बुद्धि खुलती गई थोड़ा क्वेश्चन मार्क भी उठा और आश्चर्य भी के साथ साथ क्यूरोसिटी भी हुई, तो समझ में आ गया कि एक्चुअली ये न्यू रचना है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रिजुविनेशन है, पर शब्द रचना घड़ना ही कहा जाता है। जैसे कि अभी हम कहेंगे कि कारपेंटर ने टेबल बनाया, फर्नीचर बनाया, टेलर ने ड्रेस बनाई, बिल्कुल राइट बात है, ये मेरे हमारा टेलर बड़ा अच्छा है, फर्स्ट क्लास ड्रेस बनाई है, अच्छा तो ड्रेस तो बनाई, मटेरियल तो नहीं बनाया। मटेरियल कहाँ से आया? शॉपिंग करके लाया है। शॉपिंग में कहाँ से आया? फैक्ट्री से आया। फैक्ट्री में कहाँ से आया? ओरिजिनल देखे तो खेत से आया। तो कपास मटेरियल बना, मटेरियल से फिर कुछ उसी मैटर को ट्रांसफॉर्मेशन किया तो नई ड्रेस बन गई। तो ब्रह्मा नया जीवन देते हैं, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा नया जीवन देते हैं। तो कलाकार के पास कला है नया जीवन देने की। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय विद्यालय है, कला है, सर्व कलाएं सिखाते हैं जीवन में, हर प्रकार की जीवन जीने की कला, सबसे बड़ी कला है जीवन जीने की कला। और उस कला में विचार, व्यवहार, संस्कार, परिवार, संबंध, भावना, वृत्ति, भाव, ये सब बातें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। हम किस प्रकार से किसके स्वभाव को समझ सके, अपनी भावना को भी समझ सके, मेरे कहने का इंटेंशन क्या है वो कैसा है, मेरे व्यवहार में भावना कौन सी भरी हुई है, उससे एक प्रकार का नया संसार बन जाता है, दुख का या सुख का। यही सृष्टि, आज की सृष्टि में इस प्रकार का संस्कार और संसार है। तो यज्ञ की स्टोरी, हिस्ट्री सुनाने के लिए कहा है। तो 1937 में, 36-37 में पिताश्री ब्रह्मा को, यानी अभी इनको नाम मिला ब्रह्मा, इनका ओरिजिनल नेम शरीर का नाम ब्रह्मा नहीं है, पर कर्तव्य वाचक नाम है, जैसे परमात्मा का नाम कर्तव्य वाचक है, परमात्मा शरीर वाला तो नहीं है, पर कल्याणकारी है, तो आत्मा परिणाम शिव है और उसमें अनेक नाम है। उनको कोई जन्म नहीं होता परमात्मा का, शिव को शंभू स्वयं भू पर आता है पर जन्म नहीं लेता, खुदा खुद आता है और अपना परिचय देता है। ऐसे वो परमात्मा फिर ब्रह्मा के द्वारा परतन में जैसे प्रवेश करता, गीता के महावाक्यों को देखे तो अव जानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तन आश्रतम, मूढ़मती मोटी बुद्धि मुझे नहीं पहचानते जब मैं मनुष्य तन का आधार लेता हूँ, तुच्छ समझते हैं, क्योंकि साधारण शरीर है न, आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ रही, परमात्मा भी दिखाई नहीं पड़ता, पर अनुभव होता है और अनुभव का नाम भी देखना है, मैंने अच्छी तरह से देख लिया इसको, ये कैसा व्यक्ति है, अच्छी तरह से खा कर देख लिया है, खट्टा है कि मीठा है, अब खाया टेस्ट किया मुख ने और कह रहे हैं मैंने देखा, कैसे देखा मुझे दिखाओ, खा के देखो।
तो तरीका अलग अलग है ना। तो ऐसे ये नए जीवन को नए बनाने की विधि बड़ी वंडरफुल है भाई। लाइट सोल को कल बताया था, सोल इज लाइट, पर लाइट इज माइट। पर अभी माइट के लिए एक फाइट करना पड़ता है। ये माइट फाइट करने वाली नहीं है, ये माइट लाइट है जो रास्ता दिखाती है जीवन को जीना कैसे होता है। तो 1937 में पिताश्री को साक्षात्कार हुए, मेरा ज्योति का भी साक्षात्कार हुआ, विष्णु जी का भी साक्षात्कार हुआ, नई सृष्टि कैसे बनती है उसका साक्षात्कार हुआ, पुरानी सृष्टि परिवर्तन हो रही है, एक प्रकार का बड़ा ऐसा दृश्य देखा कि एक तरफ सिविल वार हो रही है, दूसरी तरफ एटमिक एनर्जी से अचानक मतलब सृष्टि जो है मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ रही है, तीसरी नेचुरल क्लाइमेटीज है उसे सफाई हो रही है ऑटोमेटिकली, अग्नि जला रही है, वर्षा बरसात पड़ रही है, मूसलाधार वर्षा पड़ी है तो एटमॉस्फियर पॉइजन क्लीन हो रहा है, सूक्ष्म राज समाये हुए थे उसमें, वो तो बाद में पता चला। परंतु मैं मतलब नेचुरल क्लाइमेटीज, एटॉमिक एनर्जी और सिविल वार, इसके अंदर भी रहस्य क्या है वो आप आगे जब बढ़ेंगे और यूनिवर्सिटी की स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। अभी तो अल्फाबेट ही सुनने आए हैं, अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, फिर सेंटेंस पढ़ना सीखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, इसलिए आप धैर्य से शांति से थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे सुनते जाएंगे। पर ये स्टोरी हम सब की स्टोरी है, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं सृष्टि कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, तो हम सब एक्टर्स हैं उसमें। कोई का हीरो का पार्ट है और कोई का स्पेशल किसी भी प्रकार की का पार्ट प्ले करने का है, परंतु पार्ट सबका अपना अपना है। तो उस समय भारत की क्या परंतु टोटल विश्व की स्थिति ऐसी थी कि शक्तियों को, माताओं को, महिलाओं को इतना मान नहीं मिलता था। यहां तक कि कुछ लेखकों ने ऐसा भी लिखा कि मत पशु और नारी मतलब जो है वो हीन बुद्धि है, मलिन बुद्धि है, मैं तुलसीदास जी का एक नहीं है किसी और का ही है लिखा हुआ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल को बजाओ तो बजेगा, पशु को डंडा मारो तो चलेगा। तो नारियों की दशा कहाँ पहुंच गई थी, कोई अधिकार नहीं था अब, और हमेशा दासी का ही रूप रहा। यहाँ तक कि श्री नारायण जी की वे लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। क्या नारायण जी इतनी मेहनत करके आए होंगे जो थक जाते होंगे जो उनको चरण दबाने की जरूरत है, क्या क्या मेहनत की होगी। पर भाव क्या है, तो ब्रह्मा बाबा को ये चित्र अच्छा नहीं लगा, वो नारायण के पुजारी थे, उनको ये चित्र अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, वो विश्व महाराजन क्या किसी से और से चरण नहीं दबा सकते थे? पहली बात तो थके क्यों होंगे, देवताओं को थकने की तो बात ही नहीं। दूसरी बात, लक्ष्मी चरण क्यों दबावे, दासी थोड़ी थी वो, तो महारानी थी ना, महालक्ष्मी थी। तो उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया और कहा प्लीज लिबरेट करो श्री लक्ष्मी जी को दासी पने से। ये भावना थी मन की। यह तब तक कोई ब्रह्मा नाम नहीं था, उस समय वो दादा लेखराज थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, बहुत अच्छे भक्त थे, समाज में बहुत माननीय व्यक्ति थे, सम्माननीय व्यक्ति थे, राजाओं के साथ वायसरायों के साथ उनका बिजनेस था, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा था जो नेचुरली ऐसी क्वालिटी के लोग उनके आते थे। तो उनको जब ये दिखाई पड़ा कि सृष्टि इतनी जल्दी समाप्त होगी या ऐसी कैटास्ट्रफी आएंगी, तो एक प्रकार का वैराग्य सा भी आया। और दूसरी तरफ उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ, अहम चतुर्भुज तत्वम। और तीसरी बात, उनको ये साक्षात्कार हुआ कि आकाश से सितारे उतर रहे हैं और जैसे ही वो धरती पर आते हैं वो प्रिंस प्रिंसेस अथवा राजकुमार राजकुमारी या फरिश्ते बन जाते हैं। तो अब वो तो एक जैसे स्वप्न देखा, साक्षात्कार किया, परंतु उनके पास अंदर की भावना जो थी वो ये था कि नारियों का उद्धार करने का है, ये जो दासीपन से छुड़ाने का है। परंतु ये तो संसार को बदलने की बात है। तो जब ये उनको वैराग्य आया पुरानी सृष्टि में रहते हुए, तो अपना बिजनेस क्लोज किया, पार्टनर को दिया उसका शेयर और खुद, ये लंबी कहानी है, वो सारी तो नहीं बताऊंगी, वो अब आगे बताएं। उनको बहुत सारे रियलाइजेशन हुए, मतलब तो उनको ये आत्मा क्या है, कहाँ से आती है, ये साक्षात्कार हुआ था। उनके अंकल ने शरीर छोड़ा था और जब वो वापस आए अपना बिजनेस क्लोज करके, तो क्या देखा कि यहाँ पर एक लाइट है, वो धीरे 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 नीचे आती है, ट्रैवल करती है, और वो एनर्जी पैर को छू करके फिर वापस ऊपर यहाँ जाती है और गायब हो जाती है, चली गई। वो कहाँ गई, बंद हो गई, आंखें खुली हैं तो भी है नहीं आत्मा उसमें। तो खोज हुई कि क्या है, आत्मा है क्या, परमात्मा है कौन। तो ओम की ध्वनि से इन्होंने शुरू किया, ओम की ध्वनि, वैराग वृत्ति से ये बनारस भी गए, बहुत समय तक वहां पर भी रहे, साक्षात्कार कई हुए, रियलाइजेशंस के बहुत उनसे अनुभव हैं। तो जब ये ओम की ध्वनि करते थे तो दूसरे लोगों को इनसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, और वो जो लोग भी ओम ध्वनि करते थे वो भी ट्रांस में चले जाते थे। एक प्रकार से वो जो आने वाले लोग इनके घर में, इनके पास सत्संग जो होता था, तो उसको ओम मंडली कहते थे। तो धीरे धीरे एनीवे परिवार के परिवार आने लगे। अब उसमें मुख्य बात जब ये हुई कि प्रवृत्ति में रहते हुए मुख्य बात है कि
अपने जीवन में शक्ति कैसे भरनी है। मनुष्य आत्माएं कमजोर हो चुकी हैं, श्रद्धा प्रेम भावना गुणग्राही बनने के बजाय अब गुण ग्रहण करते हैं। ईर्ष्या द्वेष की जब अग्नि जलती है तो जैसे फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है, ऐसे जब दिव्य गुण होते हैं तो सुगंध फैलती है। तो इनके मन में ये भावना थी कि हर एक का जीवन एक सुंदर सत्व प्रधान मीन सत्यता की प्रधानता, स्वच्छता और सुंदरता दिव्यता आ जाए। परंतु वो छोटे छोटे उन्होंने बोर्डिंग स्कूल खोला बच्चों के लिए, वो जो 300 लोग आए तो उनके बच्चे छोटे परिवार के परिवार आए, तो जो छोटे छोटे बहनें कुमारियां कुमार पर ज़्यादा करके छोटे माताएं के साथ उनके बच्चे कुमारियां ज़्यादा थी कुमार कम थे, तो वो छोटी छोटी कुमारियों को उन्होंने इस प्रकार से और माताओं के अंदर इस प्रकार की शक्ति भरी कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो माता। ये जो पहली आइडेंटिटी है कि तुम ये फीमेल हो, ये तो तुम्हारी ड्रेस है, तुम कौन हो? मेल को कहा तुम कौन हो? मनुष्य खाली नहीं है, तुम तो आत्मा हो। तो ये परमात्मा ने ज्ञान देना शुरू किया, वो फिर डिटेल आप आगे बढ़ेंगे तो सुनेंगे। तो उससे क्या पहले आत्मिक बल छोटे छोटे बच्चों में भी ये आत्मिक दृष्टि, हम आत्मा हैं, आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ, आप भी प्रेम स्वरूप हो, मैं भी शक्ति स्वरूप हूँ, आप भी शक्ति स्वरूप हो, मैं भी आनंद स्वरूप हूँ, आप भी आनंद स्वरूप हो। तो स्वमान और सम्मान का बैलेंस सिखाया बच्चों को, पढ़ाई भी पढ़ाई, जो थोड़ा 10 साल 12 साल की थी बहने 15 साल की, उनकी अलग ट्रेनिंग थी, बच्चों की अलग ट्रेनिंग थी, भाइयों की अलग ट्रेनिंग थी। वो जो एक प्रकार का बाल विद्यालय अथवा कहें वो स्कूल था, जिसमें माताएं एक भवन में रहती थी, बाल भवन कुमारियों के लिए ये हॉस्टल था, और ऐसे ही बाबा जहाँ रहते थे वहाँ पर क्लास चलता था। उसमें मुख्य बात ये थी कि अपने जीवन में जो हमारी कमियां और कमजोरियां हैं उनको दूर कैसे करें। दुखी किसी और ने किसी और चीज ने नहीं किया है, दुख देने वाली हमारी अपनी ही कमजोरी है, ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध को हम बुरा मानते हैं, पर बुरा मानते हुए भी ना करना चाहते भी कर लेते हैं, अच्छा करना चाहते होता नहीं है। तो बाबा ने ऐसे जब सत्संग शुरू किया तो बहुतों को उनसे कुछ दिव्य शक्ति की महसूसता होती थी, तो बहुत करके जो रेंज था उस समय माताएं भाई मिडल एज के थे, बच्चों के साथ भी जो थे वो तो बेबी बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 8 साल 6 साल 7 साल के। तो बाबा ने उन शक्तियों के अंदर ये शक्ति भरी, जो रोज मेडिटेशन सिखाया, रोज का क्लास ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा होती थी वो बताई, वो तो आप आगे बढ़ेंगे फिर, ये तक आपको ज्ञान क्या है अभी तो परिचय ही मिल रहा है, इंट्रोडक्शन ही मिल रहा है। वो प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए साइलेंस का बहुत अभ्यास था। हर चीज बोर्ड पर लिखी रहती थी, प्रोग्राम भी बोर्ड पर लिखा रहता था। हाँ, दिनचर्या बिल्कुल एक्यूरेट थी, बनाना क्या है। अब 350 लोग इकट्ठे रहते हैं तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन तो पूरी चाहिए ना। तो माताओं को बाबा ने निमित्त रखा, शक्तियों को आगे किया। उसमें भी एक 18 साल की कुमारी बहुत होशियार, उनको बाबा ने उनकी विशेषता को देखते हुए और उनके साथ एक और जिनको हम दीदी मनमोहिनी कहते हैं, वो सिलाई में भी बहुत होशियार थी और बहुत अच्छे घराने की, यानी वो भी व्यापारी होते हैं ना सिंधी, बहुत करके सिंधी कम्युनिटी व्यापारी, बाहर में ही व्यापार करते थे। तो आज भी उनके जो भतीजे हैं, भतीजों के भी बच्चे हैं, लखपति करोड़पति तो अभी कॉमन बात हो गई है ना, मतलब विदेश में ही रहते हैं और बॉम्बे में तो स्थान सब सिंधियों का होता ही होता है। तो अच्छा, मैंने कहने का मतलब जैसे बाबा व्यापारी थे परंतु बिल्कुल साधारण, ये भी व्यापारी परिवार की थी परंतु बहुत कुशल थी। तो उनके साथ ये छोटी एक 18 साल की कुमारी और बाकी कुमारियां और माताएं, उनको सारी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी दी हर डिपार्टमेंट की। और रोज सवेरे योग होता था, मेडिटेशन होता था, तो 4 बजे योग के लिए आते थे सभी जो घर में रहते थे, घर से आते थे। तो मुझे याद है एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि मैं 14 साल की थी, वैसे वो उन्होंने कहा कि हमेशा तो माँ के साथ आती थी, उस दिन मदर नहीं आ रही थी, पर मुझे तो योग का बहुत शौक अच्छा लगता था, ये ओम की ध्वनि बंद हो गई और शांति में योग करते, साइलेंस में योग करते थे और बहुत अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस होते थे, कभी शांति का, कभी परमात्म प्रेम की लहर का, जैसे कि ज्ञान एक प्यार की लहर में लहरा रहे हैं, आनंद के झूले में झूल रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी अंदर की फीलिंग थी, मतलब जैसे मैंने कहा ना, टेस्ट की बात है, देखने की तो बात थी नहीं, कोई बाहर का झूला तो नहीं था, परंतु शक्ति मुख्य बात थी, सबसे बड़ी बात आप शिव शक्ति हो। तो क्या मैं, उसने बताया कि मैं जा रही थी ओम मंडली में, तो घर से गई, रास्ते में डॉग ने, डॉग्स तो थे, सवेरे का टाइम था, भौंकना शुरू किया। कहा थोड़ी, मेरे मन में एक संकल्प आया, अरे अभी डॉग भौंकता है तो कोई बाहर आएगा तो पता नहीं, कहेंगे अकेली लड़की कहाँ जा रही है। कहा फौरन मैंने चेंज किया अपने थॉट को, मैं कौन हूँ, डॉग का बच्चा, डॉग गॉड का बच्चा, गॉड डॉग का बच्चा, डॉग गॉड का बच्चा, गॉड। तो मतलब क्या था कि संकल्प शक्ति, इतनी पावरफुल संकल्प शक्ति भरी पॉजिटिविटी से, का डॉग ने बार्क करना बंद कर दिया और मैं आनंद से शांति से पहुंच गई। तो छोटी छोटी बातें भी बहुत, बच्चों को कितना स्वच्छता सिखाई, देखो कि रात को सोने से पहले पैर धुलाई किए हैं, आपको तो देवता बनने वाली हो, देवी बनने वाली हो, आपके भगत आपके चरणों को पूजेंगे तो उनको तो मिट्टी लगाई बड़ी लगेगी, चरण कैसे छुएंगे वो। तो यानी स्वमान जागृत करवाते थे छोटे छोटे बच्चों को, स्वमान क्या होता है, आत्मिक बल क्या होता है, एक्सरसाइज भी रोज करवा के ले जाते थे कराची में समुद्र किनारे। तो अब वंडर बात थी, ये माताएं बच्चे भाई भाइयों की तो ड्रेस खैर को ठीक है, तो इन माताओं को भी ये भान निकल जावे कि हम फीमेल हैं, नहीं हम शिव शक्ति हम मेल हैं। तो बहनों द्वारा, उस समय उनकी बहू भी कार चलाती थी, बेटी भी कार चलाती थी, बाबा की बेटी, फिर बस लिया बच्चों को ले जाने आने के लिए, तो बस को कि बस चलाना, उसको मेंटेन करना, एक बारी तो कहा कि सारी बस खुलवाई और कहा इसको रीसेट करो। वो ड्रेस, वो तो फोटो है, ऐसे फोटो भी है कि वो उन्होंने अब नेचुरल साड़ी पहन के थोड़ी ड्रेस साफ करेंगी, नेचुरली ड्रेस ऐसी होगी, एक्सरसाइज करेंगी तो बिल्कुल ऐसे ही ड्रेस जैसे निकर और वो पहना हुआ है। तो ये तो एक रेवोल्यूशन हो गया कि ये क्या हुआ, यानी ये शक्तियां इतनी निर्भय कैसे बन गई, आत्मबल कैसे बढ़ गया। तो थोड़ा विरोध, थोड़ा क्या, अच्छा ही विरोध हुआ, क्योंकि समाज में एक इस प्रकार की लहर थी जो अब तक माताओं के में इतने वो, एक तो डर बहुत, दूसरा समाज का डर, तीसरा अपने में विश्वास नहीं, चौथा सारी साल सारी उम्र डिपेंडेंट रही, बचपन से वही परिस्थितियां देखी, और यहाँ टोटल परिवर्तन कि आत्मा न मेल है न फीमेल है, दोनों है उसमें गुण। तो मेल का काम ये नहीं है कि बस पुरुष ही चलाएंगे, या आज से 90 साल पहले की बात है, 90 years ago, अच्छा बस साफ कराना यानी बस को फिर रीसेट करना, मशीन कोई खराब हो गई है तो कोई उन्होंने ट्रेनिंग तो ली ही नहीं थी। तो हमने दीदी से पूछा, दीदी आपने जब बस रीसेट की, मतलब दीदी मनमोहनी जिनको हम दादी कहते हैं अभी, तो कहा तो समझ की बात है, हमने पहले बुद्धि में नक्शा खींच लिया, उसको उस पर कागज पर बिल्कुल बनाया, और जैसे जैसे पुर्जे निकालते गए इतनी हिम्मत आप में आ गई, कहा दो तीन मिल करके हम उठा लिया था, रख सकते थे। तो वो चीजें ना, जो मोटर नीचे पर पहिए है उसमें है या जो भी है इसके पार्ट्स हैं, उसको रीसेट करना, ये दिमाग कहाँ से आया, स्कूल में तो पढ़ी हुई नहीं थी, ज्यादा तो एजुकेशन थी नहीं, घर में ही रहना होता था। तो साधारण जीवन भी जीना सिखाया, तो एक स्वमान का जीवन भी जीना सिखाया। तो जब ये एक प्रकार से परिवर्तन हुआ, उसमें मुख्य बात थी कि जीवन को पवित्र बनाना है, जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है, जहां पवित्रता है वहां दुख और अशांति है। तो मिसाल जैसे किचरा जलता है तो बदबू और कोयला धुआं ही निकलता है, बगीचे में फूल खिलता है तो एसेंस और फ्रेग्रेंस ही होती है। तो स्पिरिचुअलिटी, आप चैतन्य फूल हो तो आपसे स्पिरिचुअलिटी के वाइब्रेशंस आने चाहिए, उसमें आत्मा में शक्ति है और आत्मा में ही कमजोरी बढ़ती है, कब, जब उस पर 5 तत्वों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 5 एलिमेंट्स में ये नेचुरल टेंडेंसी अथवा नेचुरल स्वभाव है कि एक दो पर प्रभावित होते हैं अथवा प्रभावित करते हैं। मिसाल के तौर पर पानी का गुण ठंड है, शीतल है, आग पर पानी डालो तो भी आग बुझेगी, पानी में आग में पानी, पानी में आग डालो तो भी आग बुझेगी,
अभी आप टी बना रहे हैं, केटल रखी उबालने के लिए, कुछ ही मिनट में इतना पानी उबलने लगा, आपने केटल को टच किया, आपका हाथ जल गया। क्या हुआ पानी को? उसने अग्नि का गुण क्यों ले लिया, जबकि वह अग्नि बुझाने वाला था, शीतल था? क्या कारण था, क्या कमजोरी आई, या क्या बात, क्या बीच में भी गन पड़ा, या क्या कारण हुआ, गुस्सा क्यों आ गया? आत्मा तो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, नफरत क्यों आ गई? आपके पास अपनी संपत्ति, आंतरिक संपत्ति है, आपको ईर्ष्या क्यों आई? शीतलता का गुण आत्मा को ये क्यों प्रभाव आया इन बातों का? तो मैं एग्जाम्पल बता रही थी कि पानी गर्म क्यों हो गया, वो अग्नि की तरह क्यों बन गया, क्या कारण? हवा ठंडी है, कहां गर्म से घुसी तो लू बन गई, गर्म हो गई। बदबू से निकली तो बदबू हो गई, हवा ने भी दूसरा गुण दे दिया, पानी ने भी दूसरा गुण दे दिया। प्रकृति प्रकृति को प्रभावित करती है, पर आत्मा भी प्रभावित होती है प्रकृति के तत्वों से, देह के बाद से। हाँ, तो पानी गर्म क्यों हो गया, बीच में कौन आ गया? बीच में बर्तन आ गया। समझा क्या हुआ? पानी और अग्नि के बीच में केटल बर्तन आ गया ना, तो ऐसे हमारे और बीच में क्या आ गया, ये बॉडी आ गई आत्मा और शरीर में। तो बाबा ने प्रैक्टिस कराई, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, स्पिरिचुअलिटी को रियलिटी बनाया। वो जो ताकत आत्मा में आई, 300 इकट्ठे रहते हैं, और वो वैसे कहते हैं कि चार माताएं भी इकट्ठी नहीं रह सकती, सास बहू भी इकट्ठी नहीं रह सकती, और वहां सास भी है तो बहू भी है, बेटी भी है, मासी भी है, पर कोई नहीं जानता है कि मदर कौन है, बेटी कौन है, सास कौन है, बहू कौन है, हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, सोल है। वो स्पिरिचुअलिटी जब रियलिटी आ गई तो रॉयल्टी आ गई, व्यवहार बड़ा रॉयल हुआ, रेस्पेक्ट वर्दी हो गया, रेस्पेक्टफुल हो गया। और अगर कोई कमजोरी आती थी तो रोज शाम को जिनको बाबा जगदम्बा मदर कहते थे, 1800 उन्होंने इस बीच में ब्रह्मा बाबा की कहानी तो ये है कि उन्होंने ट्रस्ट बनाया और 8 शक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी प्रेसिडेंट बना के सब समर्पण किया, यानी यज्ञ स्थापन हुआ। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का असली रूप है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये यज्ञ स्थापन हुआ, उसमें माताओं को विशेष महत्व मिला, और भाई तो थे, बिना भाइयों के भी काम नहीं चलता बराबर, बाहर का भी काम सब। तो अभी तो ज्यादा भाई है, पहले तो बहने कम थी, बहने ही सब संभालती थी, अभी भी बहने ही हैं सब जगह, एडमिनिस्ट्रेशन में 325-30 रजिस्टर्ड, 300 कंट्रीज में अपने सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पर भाई हैं किसी किसी स्थान पर, परंतु सब जगह की हेड ब्रह्मा कुमारी बहने हैं। 5,000-50,000 सेंटर्स हैं किसी किसी स्थान पर, कितने लाखों बाबा के बच्चे ज्ञान लेते हैं, पर संभालने वाली बहने हैं। तो क्या भरा, स्वमान जागृत किया। तो जब स्पिरिचुअलिटी में भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, टाइम तो होता जा रहा है और मेरे को उत्साह भी बढ़ता जा रहा है, पर मैं समय को पहले खत्म करती हूँ। बहुत सारी बातें याद आ रही है एक्चुअली। तो मतलब तो उस समय एक कमाल की बात थी, तो रेवोल्यूशन हुआ सोसाइटी में, न्यूज़पेपर में भी आ गया कि ये क्या सिखाया। मतलब परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय तक, पार्टीशन से पहले की बात है। तो वो जो 18 साल की कुमारी थी उसकी विजडम को देख के बाबा 60 ईयर्स ओल्ड, वो 18 ईयर्स ओल्ड, उनको बाबा मातेश्वरी कहते थे, गॉडेस ऑफ विजडम सरस्वती, और उनके नाम से ही ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा। ब्रह्मा का नाम तो ब्रह्मा भी नहीं, दादा लेखराज का ही नाम नहीं है, नाम से भी न्यारे। और जो आने वाले थे उनके नाम भी टोटल बदल गए, किसी का नाम प्रकाशमणि, किसी का नाम कमलमणि, किसी का नाम रतन मोहिनी, किसी का नाम गुल मैंने विश्व रतन, किसी का नाम आनंद किशोर, किसी का नाम मैंने विशेष विशेष नाम, गुणवाचक नाम रखे। तो देह का भान भी भूल जावे, अभिमान भी खत्म हो जाए, मैं फलाना हूँ, मैं बड़ा हूँ, सम्मान भी जागृत हो, तो जो भी कर्तव्य करेंगे उसमें दूसरों को का कल्याण करने की भावना होगी, और अपना कल्याण तो हो गई। ज्योति जगेगी तो अंधेरा तो मिटेगा, तो नेचुरली है। महत्व किसको मिलेगा? लाइट को मिलेगा कि अंधेरा खत्म कर दिया, रास्ता दिखा दिया। तो ये शक्ति तो बहने, जिस ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी संपत्ति समर्पण की, तो 1950 तक पाकिस्तान में ही थे। वंडर ये था उस समय सिविल वार, पाकिस्तान इंडिया का डिवीजन 1947 में, मुसलमानों ने कहा वहाँ के मेयर ने और वहाँ के कि आप नहीं जाओ, आप लोग फरिश्ते हो, आप हमारी रक्षा करने वाले हो। और जो सामान देने आना था, पठान ट्रक आता था 300 के लिए, सब सामान तो चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, बाकी सामान चाहिए, वो बाकी कपड़े वगैरह तो विजडम थी दीदी और मामा की, जिनको हम मातेश्वरी कहते हैं, उन्होंने बाकी सब सामान खरीदवा के रखवा दिया 1937 से पहले। पर रोज का खाना ये थी विजडम, वो तो पहले से स्टॉक हो गया रोज की चीजें, कपड़े धुलाई करने हैं तो साबुन भी चाहिए, स्टॉक चाहिए बाकी चीजों का, सूखी चीजों का। तो पठान जो सामान देने आता था उसको ब्रह्मा बाबा से साक्षात्कार होता था कि एडम ने मुझे फूल दिया, मैं अल्लाह के बगीचे में गया था। कहते अल्लाह का बगीचा यहाँ कहाँ से आया? कहाँ, यहाँ जब ये रहते हैं ना अल्लाह के फरिश्ते लोग रहते हैं। और बाबा ले जाता था बाहर समुद्र किनारे, सबको एक्सरसाइज भी कराते थे। उस समय जब ये पाकिस्तान बाहर चल रही थी तो बाबा ने कहा कि आपको ले चलते हैं, आपकी शक्ति का भी टेस्ट है कि आपकी स्मृति कितनी दिव्यता से भरी हुई है, जो आप पर किसी की नजर किसी भी प्रकार की नेगेटिव ना पड़े। ये था आत्मिक बल। फिर तो खैर वो 47 से 50 तक घर वाले जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए थे, उनको चिंता हुई हमारी बच्चियां, हमारी बहुएं, हमारे परिवार वाले वहां हैं। तो पाकिस्तान से 1950 में जून में, मई में 55 ऐसा करके, मतलब 55 50
फिफ्थ ऑफ मे तो भारत में आ गए और माउंट आबू में आए। ऐसा इसी स्थान पर आए, मतलब आबू शहर अभी आपने देखा नहीं, पांडव भवन। अच्छा, उस समय उन्होंने, बाबा ने सब शक्तियों को भेजा कि आपने जो अब सीखा है, जो जीवन में धारण किया, दूसरों को कराओ। लाइट जगी हो, मैं मोमबत्ती जगी हो, दूसरे की न जगावे, वो दीवा क्या जो दूसरों की लाइट न जगावे। एक दीवा हजार दीवा जगाएगा तो भी उसकी लाइट कम नहीं होगी, उसकी लाइट सब जगह फैलेगी। समान जागृत करवाते थे दिव्यता का। और फिर जब वहां तो सब जो बाबक ने, उन लोगों ने तो बहुत सम्मान से भेजा, परंतु जब भारत में आए हम लोग, मैं 57 में आई, तो 58 59 में माउंट आबू में कोई साधन नहीं थे। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस की तरह पले थे। ब्रह्मा बाबा के पास प्रॉपर्टी जो थी, उनके साथ बाकी जो परिवार समर्पण हुए उनकी प्रॉपर्टी थी, वो तो हर दिन 300 का खाना बनता है। और मैं सच्ची बात बताऊँ, सिंधी लोग रिच खाना बहुत खाते हैं। आप पैसे कोई सिंधी होंगे तो हर चीज तली हुई चाहिए, रिच चाहिए बिल्कुल। मैं वेजिटेरियन बने तो खाना तो टेस्टी बने मिले ना, बहुत टेस्टी खाना होता है, पर वेजिटेरियन तो अब यहाँ आए तो कुछ भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल सिंपल। वो एक टेस्ट हुआ कि सिर्फ बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी और लस्सी, ये खाना होता था, पर बहुत अच्छा था, सब हेल्दी रहे। क्यों? डेयरी फ्री लस्सी तो थी थोड़ी, वह थोड़ा नम मात्र होता था। बाबा कहते थे दाल बछड़े पाल, भाई दाल बनाई और 300 लोग हैं, 200 हैं, बाकी कुछ अपने घरों में भी गए, माँ बाप के पास, जहाँ जहाँ उनके पेरेंट्स रहते थे या संबंधी रहते थे। तो हम लोग जब आए तो उस समय कोई, सिर्फ एक ही छोटा सा स्थान था, अभी तो बहुत बड़ा हो गया, माउंट आबू भी काफ़ी मकान अपना, पांडव भवन भी बढ़ गया है। बाथरूम तो पुराना मकान था, उसी में एक बाथरूम था, और कितनी सारी बहनें, एक कमरे में 12 बहनें रहती थी। आपको तो अभी यहाँ, क्योंकि अचानक क्योंकि रिपेयर हो रहा है दूसरा बिल्डिंग, तो सारे सेवाधारी उसमें राजऋषि में है, तो 5-6 कमरे तो उनसे भर गए। समझा था रिपेयर हो जाएगा, पर आबू में अभी रिपेयर बंद है। तो आप लोगों को फिर ये एक बिल्कुल सिंपल और श्रेष्ठ स्थान मिला है, पर बहुत अच्छी बात है। 8 लोग घर में थोड़ी इकट्ठे सोके सोएंगे एक जगह, यहाँ तो सबको एक दो से मिलने का चांस मिलता है। हम लोग तो जमीन पर सोते थे, पटरानी बन के सोते थे। पटरानी का मतलब पट पर सोने वाली रानी, पट राजा, जमीन पर ही सोते थे, जगह ही नहीं थी। बाथरूम कैसा था, टिन का बने हुए थे 3-4, पानी गर्म होता था लकड़ी से और या कोयले से, उसे उपलों से, गाय के उपले बनाए। पानी आधी बाल्टी गर्म लिया, आधी बाल्टी ठंडा लिया और बाथरूम में जाके स्नान किया, तो उसमें भी क्यों लगती थी क्योंकि थोड़े बाथरूम में स्नान करने वाले ज्यादा है और सबको स्नान करके ही क्लास में आना है ताकि फ्रेश रहे। तो ये जीवन की बातें, जो जीवन जो है, जीने की कला, खुशी से रहे, रेस्पेक्ट से रहे, दूसरे को रेस्पेक्ट देवे, विशेषताओं को देखे, विशेषता सुन के खुश हो जाए, खुशी की खुराक खाए। समस्या आएगी चली जाएगी, समोसा बना के खा लो आई है तो चली जाएगी, सीख लो कुछ उससे। परेशान तो बाकी ये तो एक टेस्ट पेपर है, कुछ सीखने की किसी में शिक्षा मिलती है। तो ऐसे वॉक करने बाबा ले जाते थे तो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। सांप बरसात थी ना, तो सांप एक्चुअली छोड़ के चले जाते हैं। कहा देखो बच्ची इतना तो अकल होना चाहिए जो ये सांप एक्चुअली छोड़ के स्लिप चला गया। तो ये बॉडी क्या है, ये स्किन है ना पुरानी, इसको तो त्यागना ही है ना आखिर, पर प्रैक्टिस करो शरीर में रहते। मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, बॉडी में रहते बॉडी से न्यारी हूँ। हर बात में कुछ स्पिरिचुअलिटी सिखाई। वहाँ नकी लेक के पास खड़े हुए पुल पर, तो नीचे उस समय तो ये बहुत रिफाइन हो गया है, ये भी ब्रह्मा कुमारियों के हमारे एक भाई हरीश भाई हैं, उनको था ये स्थान भगवान के घर का स्थान है, आबू पर्वत फर्स्ट क्लास बनना चाहिए। तो म्यूनिसपैलिटी के सहयोग से, मतलब साधन तो उनसे ही मिले, परंतु सब पूरा स्थान फर्स्ट क्लास बना दिया, रिफाइन कर दिया, और मजदूरों को मजदूरी मिल गई। तो भगवान रोजी रोटी सबको देता है, तो इतने सब लोगों को माउंट का मकान बनते गए, गरीबों को रोटी भी मिली, रोजी भी मिली, और रोजगार खुशी भी मिली। हाँ तो मैं बता रही थी कि वहाँ पर नीचे था तालाब छोटा सा, पानी गंदा जाता था, ऐसा छोटा सा तालाब जैसा था, कीचड़ भी बहुत था। तो छोटे सांप और मेंढक थे, एक सांप ने मेंढक को स्वॉलो कर लिया, तो देख के अच्छा नहीं लगा, कहा ठहरो ठहरो बच्ची देखो, एक स्नेक इज गोइंग टू मेडिटेट। कहा स्नेक इज गोइंग टू मेडिटेट, कहा स्नेक इज गोइंग टू मेडिटेट। तो कहा देखो ये अभी बैठा रहेगा ना घुटनी मार के, तो मैं जो मेंढक है वो गल जाएगा अंदर। तो तुम बच्चों में इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि जब ये ट्रा ट्रा करने वाली बातें तुम्हारे कानों के अंदर से आती है ना, तो शांति में बैठ जाओ, तो ये मेंढक चुप हो जाएगा, गल जाएगा, वातावरण में नहीं फैलाओ, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई। तो खुद भी दुखी, दूसरों को भी दुखी नहीं करो, दुख लो नहीं किसी से, दुख लिया, इतना लिया तो उल्टी करनी पड़ेगी, तो जरूर जाके दूसरों के पास करेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो बात हर बात में राज समाया है, हर कदम पर, जैसे जैसे व्यवहार में, विचार में, बिजनेस में, परिवार में समस्याएं तो बहुत आई, परंतु समस्याओं को एक प्रकार का पपेट शो देखा, बस खेल देखा। तो ऐसे करने से नेचुरली स्पिरिचुअलिटी रियलिटी बनी, रियलिटी रॉयल्टी बन गई, रॉयल्टी डिविनिटी बन गई, और डिवाइन किंगडम स्थापन होनी है, इसलिए इसका नाम राजयोग है। ओम शांति। कहानी तो दादियों की सुनानी थी, परंतु वो तो फिर जो बहनों ने क्या कमाल की, ये इतने सारे सेंटर ऐसे खोले, ब्रह्मा बाबा भी चले गए, मातेश्री सरस्वती भी चली गई, परंतु उन शक्तियों ने जो 12 साल 15 साल की आई थी, उन्होंने ये इतना सारा आज 130 देशों में सेंटर खोले, और 10 लाख से भी ज़्यादा भाई बहन हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं परिवार में रहते हुए।
थैंक यू सो मच दीदी, आप लोग को अच्छा लगा और सुनना चाहेंगे? अभी नहीं, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया है, दीदी को भी वापस जाना है, बट दीदी बहुत बहुत अच्छा लगा, और फिर कभी मौका मिलेगा आप नेक्स्ट टाइम जब कभी आएंगे प्रोग्राम में तो दादियों का भी सुनाएंगे। सो थैंक यू सो मच दीदी फॉर सच ब्यूटिफुल स्टोरीज एंड मेमोरीज, एंड जिनसे हमको प्रैक्टिकल में कुछ अपने जीवन में सीखने के लिए मिलता है। कई बातें अननोटिस चली जाती हैं, कई शिक्षाएं हम मिस कर देते हैं, लेकिन आज शांति से बैठ करके सुन रहे हैं तो लग रहा है कि जीवन में हर एक क्षण में सीखने के लिए कुछ है। तो थैंक यू दीदी। अभी दीदी आपकी दृष्टि,
आपके क्वेश्चंस तो होंगे पर अभी टाइम नहीं है, पर एक समय क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखे
जी।
मैं समझती हूँ शिवानी दीदी यहाँ पर है तो उनका टॉपिक क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं, परंतु फिर आएंगे जाएंगे ना सेवा केंद्र पर ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस का आंसर तो मिलेगा ही, जीवन ही पढ़ाई है
जी। दीदी थैंक यू दीदी, और कोशिश रहेगी हमारी कि दोबारा भी हम दीदी से फिर से मिलें, लेकिन अभी हम एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे, इन सभी बातों को अपने अंदर गहराई से उतारेंगे और उसके बाद में कल का सबको पता है ऑलरेडी, फिर भी रिमाइंडर मॉर्निंग यहाँ पे अमृत वेला मेडिटेशन 4 o'clock से शुरू होगा, यू कैन कम एनी टाइम बिफोर 4:15 एंड उसके बाद में आफ्टर यू गेट रेडी एंड फ्रेश 7 o'clock से हमारा फिर इनपुट सेशन शुरू हो जाएगा। एंड इनपुट सेशन के बाद जिनको कल यहाँ से डायरी पेन गिफ्ट नहीं मिला था उनको कल यहीं से 8 बजे जब सेशन पूरा होगा तो उनको यहाँ से मिलेगा। थैंक यू सो मच, ओम शांति।